आस्तिक और अरुणिमा गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी चल रही थी। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की ओर देख रही थी। हॉस्पिटल से होटल के कमरे में आने के बाद आस्तिक उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका था और उसके बाद दूसरे कमरे में चला गया था। लेकिन उस दौरान भी जब वो कमरे में नहीं था, अरुणिमा बस उसकी बातों के बारे में ही सोच रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा से स्पष्ट कह दिया था कि वो उसे गर्भवती नहीं होने देगा, क्योंकि यदि वो गर्भवती होती तो उसका खूबसूरत बदन खराब हो जाता और ये चीज आस्तिक नहीं चाहता था। इसके अलावा अरुणिमा अपने पिता की कंपनी में निवेशित धन का भुगतान भी कर रही थी। वो ये सोच सोचकर और अधिक दुखी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार, खासकर उसकी माँ, उसका साथ देगा, लेकिन अस्पताल में अपनी माँ से हुई बातचीत के बाद उसे एहसास हो गया कि अपने परिवार से उम्मीद लगाना अब उसके लिए सही नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी उसकी माँ उसे शादी निभाने की सीख दे रही थी, जिससे अरुणिमा और भी निराश हो गई। इस अंधेरी दुनिया में वो किसी आशा की किरण की तलाश करने लगी। उसे यकीन था कि उसका अंत ऐसे नहीं लिखा है। हाँ, ये अलग बात थी कि जब से वो आस्तिक के क्रूर स्वभाव से रूबरू हुई थी, उसके लिए जीवन जीना मृत्यु से भी बदतर लगने लगा था। उसे मर जाना अधिक बेहतर लगता, लेकिन फिर भी वो जीना चाहती थी। मृत्यु आसान थी, पर जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इतने कुछ के बाद भी अरुणिमा ने अपने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया था, और यही बात थी जो उसे जीवित रहने की उम्मीद दे रही थी। इस अंधेरी दुनिया में वो सिर्फ इस भरोसे पर जी रही थी कि उसकी जिंदगी में भी कभी न कभी छोटी सी रोशनी की किरण अवश्य आएगी। अपने कमरे में बैठी अरुणिमा यही सब सोच रही थी जब आस्तिक कमरे में आया। उसके साथ होटल का एक कर्मचारी भी था। कमरे में आते ही आस्तिक ने कहा, तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। इससे पहले कि अरुणिमा कोई सवाल करती, आस्तिक कमरे से बाहर चला गया और होटल का कर्मचारी उनका सामान पैक करने लगा। अरुणिमा कमरे से निकलकर पार्किंग क्षेत्र में आई, जहां आस्तिक और ड्राइवर्स पहले से मौजूद थे। आस्तिक के हाथ में सिगरेट थी और वो अरुणिमा का इंतजार कर रहा था। उसके दूसरे हाथ में फ़ोन था और वो किसी से बात कर रहा था। अरुणिमा को देखकर उसने सिगरेट अपने पैरों तले को चल दी और फिर गाड़ी की ओर बढ़ गया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आस्तिक व अरुणिमा दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उनका सामान भी डिग्गी में रखा जा चुका था। अरुणिमा हैरान थी, वे लोग वापस मुंबई जा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? अभी तो वो अपने पिता से बस एक बार ही मिली थी और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो एक साल बाद अपने शहर लौटी थी। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की इमारतें उसे अपनेपन का एहसास करवा रही थी। ऐसे में कुछ घंटों के अंदर ही वापस लौटना उसे मंजूर नहीं था। वो आस्तिक से कुछ कहने की सोच रही थी। उसने देखा कि आस्तिक पूरे ध्यान से अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अरुणिमा ने उसके काम खत्म होने का इंतज़ार किया और फिर बाहर की ओर देखने लगी। गुजरती हुई गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी इमारतें, ये वही सड़क है जहाँ बचपन में स्कूल जाते वक्त वो साइकिल चलाया करती थी अपने दोस्तों के साथ। कितनी बार ये सड़क उसकी दौड़ की गवाह बनी थी, कितनी बार वो हारी थी और कितनी बार जीती थी। अपने बचपन की उन धुंधली यादों को महसूस करके अरुणिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। देखते ही देखते सड़क पीछे छूट गई और उनकी गाड़ी शहर से दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई। अरुणिमा हैरान रह गई, ये रास्ता एयरपोर्ट की ओर नहीं जाता था। जाहिर सी बात थी, ये उसका शहर था और उसे अच्छी तरह पता था कि यहाँ से एयरपोर्ट के कितने रास्ते जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर उनकी गाड़ी मुड़ी थी वो कहीं से भी एयरपोर्ट की ओर नहीं जाता था। अरुणिमा के मन में सवाल उठे, लेकिन उसने अभी तक आस्तिक से कुछ नहीं पूछा था। इतने दिनों की बातचीत में उसे इतना समझ आ गया था कि आस्तिक कभी भी उसके सवालों के सीधे जवाब नहीं देगा, और उसके जो उल्टे जवाब होते हैं वे इस वक्त अरुणिमा बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए उसने चुपचाप मंजिल तक पहुंचने का इंतजार किया। करीब आधे घंटे बाद बैंगलोर हाईवे से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में गाड़ी आकर रुक गई। अरुणिमा हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बेहद बड़ा और विशाल बंगला था। दिखने में ये बंगला बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सा अंधेरा था। बाहर से देखने में ही इसमें एक रहस्यमय कालापन झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका पेंट पुराना हो चुका था। जब इसे रंगा गया होगा तब इसका इंटीरियर काला रखा गया होगा, क्योंकि कई जगहों पर गहरे काले रंग के इंटीरियर अब और भी अधिक काले हो चुके थे। अरुणिमा अभी भी गाड़ी में बैठी थी और खिड़की से झांककर उस सफ़ेद बंगले को देख रही थी, जब उसने आस्तिक की आवाज़ सुनी। आस्तिक गाड़ी से उतर चुका था और खिड़की से झांकते हुए बोला, तुम्हें क्या निमंत्रण देना पड़ेगा? अरुणिमा अपने ख्यालों से बाहर आई और आस्तिक को देखने लगी। वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि आस्तिक आगे आगे चल रहा था और पीछे ड्राइवर गाड़ी से उनका सामान निकाल रहा था। अरुणिमा ने कुछ नहीं कहा और आस्तिक के पीछे पीछे हवेली में दाखिल हो गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो एकदम से हैरान रह गई। ये एक पुरानी खंडरनुमा हवेली थी। चारों ओर जाले और चमगादड़ों का बसेरा था। हालांकि इतनी विशाल हवेली में ज्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन ये साफ छलक रहा था कि इसे काफी समय से बंद रखा गया था। सोफों को चादरों से ढका गया था और झूमर को भी कागज से पैक कर दिया गया था। लेकिन अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये पुरानी हवेली किसी डरावनी फिल्म की सेट जैसी लग रही थी। अरुणिमा को बहुत हैरानी हुई, किसी ने इतनी सुनसान जगह पर इतनी शानदार हवेली क्यों बनाई, वो भी इतनी डरावनी थीम के साथ।
बेंगलोर शहर अपने आप में नामी शहर था, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। यहां कई अमीर लोग रहते थे और कई इलाके ऐसे थे जहां बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन सबसे अलग ये हवेली शहर से इतनी दूर एक वीरान जगह पर बनाई गई थी, और वो भी इतनी अजीब तरीके से। या तो ये इंसान बहुत रहस्यमयी था, या फिर यहाँ रहने वाले लोग काफी रहस्यमयी होंगे। आज से हम यहीं रहेंगे। आस्तिक के इतना कहते ही अरुणिमा एकदम से चौंक गई और उसे देखने लगी। आस्तिक उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, जगह पसंद नहीं आई? फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे अगर पसंद नहीं भी आई तो भी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें कोई विकल्प नहीं दे रहा, बल्कि आदेश दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आज से हम यहीं रहेंगे जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लगी और आस्तिक उसे जगह को घूरते हुए देखकर मुस्कुराया। वैसे जगह तो काफी रोमांचक है, जैसा इंटरनेट पर देखा था बिल्कुल वैसा ही है, अरुणिमा धीरे से बोली। पर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? होटल में क्या समस्या थी? आस्तिक ने उसे घूरकर देखा। उनकी तीखी निगाहें एकदम से टकराई। अरुणिमा ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो अरुणिमा के पास आते हुए बोला, क्यों, होटल में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम वहां रहना चाहती हो? उसके कहने का मतलब अरुणिमा समझ चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसे देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। जब हम लोग होटल में चेक इन कर चुके थे तो फिर तुम्हें ये हवेली लेने की क्या जरूरत थी, वो भी शहर से इतनी दूर? पता है यहाँ से वापस शहर जाने में कितना समय लगेगा, और अगर मुझे पिता से फिर से मिलना जाना होगा तो? आस्तिक ठंडी और सख्त आवाज में बोला, एक तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ समस्या में फंस गया हूँ, और ऊपर से तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। अरुणिमा एकदम से अटक गई। उसने जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि यहाँ शिफ्ट होने की कोई खास वजह है क्या?
आस्तिक ने एक नज़र हवेली पर डाली और बोला, वैसे यहाँ शिफ्ट होने की कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन मुझे यह हवेली पसंद आई थी। और जहाँ तक यहाँ रुकने की बात है, तो बात यह है कि मैं तुम्हारी वजह से बैंगलोर आया हूँ, वरना ना तो यहाँ मेरा कोई काम है और ना ही मुझे यहाँ आने का शौक था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे बाप को देखने के लिए मैंने अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ आने का फैसला किया, और यहाँ आते ही मुझ पर हमला हुआ। अब जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि वो हमला किसने करवाया था और मेरा कौन सा दुश्मन मुझे यहाँ मरवाना चाहता है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। फिर वो एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो खुश हो जाओ मिसेज रायचंद, क्योंकि अब तुम ज्यादा समय अपने शहर में रह सकती हो और अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकती हो। और हाँ, एक और रोमांचक बात यह है कि इतनी बड़ी हवेली में हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, ड्राइवर जरूर है, लेकिन वो बाहर गाड़ी में ही रहेगा। आस्तिक की बात खत्म होते ही अरुणिमा चौंक गई। यानी आस्तिक यहाँ सिर्फ अपने अनजान दुश्मन की तलाश के लिए ठहरा हुआ है जिसने उस पर हमला करवाया था, और जब तक उसका दुश्मन नहीं मिलेगा तब तक उसे इस खंडहरनुमा हवेली में ही रहना होगा। अरुणिमा ने एक बार फिर इस विशाल जगह को देखा। उसने गलत नहीं सोचा था, ये हवेली सच में भूतिया लग रही थी। और जब आस्तिक यहाँ नहीं रहेगा तो वो इतनी बड़ी वीरान हवेली में अकेली घूमेगी? बेडरूम उस तरफ है, चलो, आस्तिक ने कहा और आगे बढ़ गया। अरुणिमा हवेली को निहारते हुए उसके पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ वो कदम रख रही थी, वहाँ वहाँ का माहौल उसे डरावना और खौफनाक लग रहा था। आस्तिक बिना किसी भाव के आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था जिसमें वो कुछ काम कर रहा था। अचानक वो एक जगह रुका और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जाहिर है ये उसका कमरा था, क्योंकि दरवाजे पर एक खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई थी। अरुणिमा आस्तिक से चार कदम पीछे चल रही थी। जैसे ही उसने उसे कमरे में जाते देखा, वो अपनी जगह रुक गई। वो इधर उधर देखने लगी। शायद आस्तिक को उसका कमरा मिल गया था, तो अब उसे अपना कमरा ढूंढना था। वैसे भी मुंबई वाले घर में आस्तिक और अरुणिमा के कमरे अलग अलग थे, तो यहाँ वो उसे अपने साथ क्यों रखेगा, जबकि इतनी बड़ी हवेली में उनके पास रहने के लिए पूरा का पूरा घर ही था। अरुणिमा दूसरे कमरे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आस्तिक की आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो, अंदर आओ। आस्तिक की आवाज़ में एक धमकी सी महसूस हो रही थी, जिसे सुनकर अरुणिमा के रोएं खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा। अरुणिमा ने सोचा था कि अपने शहर वापस आकर वो एक बार फिर से जीने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ तो वो मौत के दानव को अपने साथ लेकर आई है। जब देव ने उसका दिल तोड़ा था, तब इस शहर की हर गली उसे देव की याद दिलाती थी, और जब वो आस्तिक से शादी करके यहाँ से जा रही थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि कभी इन गलियों में लौटेगी। लेकिन आज यही गलियाँ, यही शहर उसे अपना लग रहा था। 5 मिनट में बाथरूम में आओ, मुझे स्नान करना है। जैसे ही अरुणिमा कमरे में दाखिल हुई, आस्तिक की आवाज़ ने उसे झकझोर कर रख दिया। वो हैरानी से देखती रही। आस्तिक अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था। उसने अपनी शर्ट उतारकर पास ही रखे धूल लगे सोफे पर फेंक दी और बाथरूम के अंदर चला गया। आस्तिक के जाते ही अगले ही पल पानी गिरने की आवाज़ आई, यानी वो शावर चला चुका था, और जाने से पहले उसने अरुणिमा को आदेश दिया था कि वो उसके पास बाथरूम में आए। अरुणिमा का दिल बैठने लगा, उसका मन भारी हो गया था। लेकिन जब उसकी नज़र कमरे में गई तो उसने देखा कि ये एक विशाल और ग्रे रंग का कमरा था, जिसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था, लेकिन बाकी डिज़ाइन की तरह यहाँ भी डरावनी चीज़ों से सजावट की गई थी। पौरे कमरे में नजर डालने के बाद अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे विशाल आईने पर पड़ी। वो धीरे धीरे आईने के पास गई और उसमें अपना अक्स देखा, और जैसे ही उसने खुद को आईने में पूरा देखा, एक झटका उसके सीने में महसूस हुआ। वो अपने अस्तित्व को देखने लगी। ये वो नहीं थी। वो कब आस्तिक के हाथ का खिलौना बन गई? लेकिन खुद को आईने में देखते हुए हैरानी से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं। मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मुझे लड़ना होगा, फिर से कोशिश करनी होगी और यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन एक क्रूर व्यक्ति की कैद से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मुझे उसी क्रूर व्यक्ति को ये यकीन दिलाना होगा कि जो वो चाहता है वही हो रहा है।